शेखर ने देखा कि वह बेवकूफ़ है और सिर्फ हॉस्टल ही नहीं सारी क्लास और सारा कॉलेज इस बात को जानता है कि वह बेवकूफ़ है। कॉलेज में वह एक क्लास से दूसरी क्लास में जाता है तब उसे लगता है कि आने जाने वाले सब लोगों की आंखें उस पर लगी है और उन सब आंखों में उपहास है। क्या उस एंटीगोनम के फूल के कारण? लेकिन वह तो बहुत से लड़के लगाते हैं, उन पर कोई नहीं हंसता। मानो लोग जानते हैं कि एंटीगोनम फूल चाहे हो किसी के बटन में लगा हुआ शेखर के ही कारण है। और सब लोग क्लब की बात भी जानते हैं, उसके पत्र की बात भी जानते हैं। कुछ एक ऊंची क्लासों के लड़कों जो दूसरे कॉलेजों से आते हैं वे तक उसकी ओर देखकर मुस्कुरा देते हैं और उनकी मुस्कुराहट शेखर को दिख जाता है कि वे भी उसकी बेवकूफ़ी जानते हैं। कभी कभी कोई आवाज़ें भी कसता है, ब्रह्मचारी जी, प्रोफेसर साहब जा रहे हैं। कभी दो चार लड़के साथ चले रहते हो, एक सुना कर कहता, यार तुम सब तो भेड़े हो भेड़े, और बाकी भेड़ों की तरह में भी आने लगते। शेखर दुख और ग्लानि से भरकर सोचता, इन लोगों को मुझसे कब का बैर है, मैं बेवकूफ़ हूँ सही, ये लोग भी जानते भी है सही, लेकिन ये लोग हर समय उसकी यादें क्यों दिलाते हैं जबकि मैं भूलता नहीं हूँ। और वह अपने पीड़ित अभिमान को छिपाने के लिए और भी तन कर चलता। उसके बटन में एंटीगोनम का फूल मानो और भी अरक चमक उठता। और तब शेखर देखता कि कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां भी शायद उसका उपहास कर रही है। लेकिन इससे उसे दुख नहीं होता, एक जलन होती थी। पुरुष उसे बेवकूफ़ समझ कर हंसे, यह बात उसकी समझ में आती थी क्योंकि वह उनके अधिकारों का खंडन करता था। लेकिन ये लड़कियां, वे अपने आज़ादी का आदर नहीं करती तो क्या उसकी सद्भावना के प्रति क्षमा भाव भी नहीं रख सकती? कभी वह सोचता, पुरुषों ने ही उन्हें इतना कमीना बना दिया है कि उदारता उनमें रही ही नहीं। लेकिन ना जाने क्यों उसे लगता कि यह तर्क झूठ है। कमीनापन भले ही पुरुष ने पैदा किया हो, लेकिन यह उपहास वृत्ति उनकी स्वाभाविक है और यह उसे सत्य नहीं होता था कि नारी में, भारत की उस नारी में जिसमें वह भविष्य की आशा देखता था, इस प्रकार की मौलिक कठोरता हो। वे उससे घृणा करे या उसे स्वीकार था या नहीं, लेकिन एक दिन उसके एक सहपाठी ने उसे कहा, भाई सोची तुमने दूर की। शेखर ने छिन्न विस्मय से कहा, क्या? यही जब सुधार उधार की बातें, शादी ना करना, औरतों से दूर रहना वगैरह वगैरह, क्या मतलब? हाँ भाई, है गजब की चाल, आखिर बात क्या है? शेखर कुछ खींच कर बोला, अरे भाई, एक हम है कि कोई कभी हमारी तरफ देखता भी नहीं, तरस के रह जाते हैं। एक तुम हो कि हर वक्त तुम्हारी चर्चा रहती है, कॉलेज भर की लड़कियां तुम्हारी राह देखती है और क्लास की लड़कियां तो तुम पर मरती है। शेखर ने कुछ और खींचकर और काफ़ी सा विस्मित होकर कहा, तुम एक ही बेवकूफ़ निकले। अरे, उन्हें कैसे मुझसे आदमी में दिलचस्पी होगी, मैं तो उनके पास भटकता भी नहीं। अजी रहने दो, बहुत बनो मत। क्या लड़कियां उन लोगों को पसंद करती है जो उनके पीछे जूते चटकारते फिरते हैं? वैसे लोगों की तो परवाह ही नहीं करती, वे जानती है कि ये तो बेदाम के गुलाम है। उन्हें वह आदमी पसंद होता है जिसे जीतने में शिकार का लुत्फ आए, कुछ खतरा हो, कुछ तकलीफ हो। तुमको किसी ने लड़की की छाँव के पास भी नहीं देखा? इससे जो लड़की अपनी किताबें तुम्हारी खोपड़ी पर लाद कर तुम्हें अपने पीछे पीछे घसीट सकेगी, वह अपने को रानी कृष्णा से कम नहीं समझेगी। तुम निश्चय मानो, तुम्हारी पांचों उंगली घी में है। शेखर को एकदम क्रोध हो गया, लेकिन साथ ही उसे यह भी याद आया, 3-4 दिन पहले क्लास की एक लड़की ने उससे पूछा था, समाज के बारे में आपका विचार क्या है? मैं एक निबंध लिखना चाहती हूँ उसके लिए। शेखर ने उत्तर दिया, मैं अपने लेख ला दूंगा, पढ़ लीजिएगा। लेकिन उसने जोर दिया था कि वह स्वयं शेखर से सुनना चाहती है। और तब शेखर ने लाइब्रेरी में बैठकर मेहनत और काफ़ी कष्ट से अपने विचार उसे सुनाए थे और पढ़ने के लिए कुछ किताबें बताई थी। उसने बातें काफ़ी कड़वी कही थी और चलने पर यह देखकर हैरान हुआ था कि नमस्कार के साथ उसे इतनी मधुर हंसी क्यों मिली है। अब याद आते ही उसका हृदय एक संशय से भर गया कि कहीं सहपाठी की बात ठीक तो नहीं है। उसने क्रोध में उसे कहा, तुम अपने गंदे विचार अपने पास रखो, समझे, मुझे इस सब बकवास से कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसका मन एक उद्वेग से भर गया कि लोग उसके विचारों को, उद्देश्य को ना देखकर उसे ही देख रहे हैं। वह क्लास की लड़कियों से और भी बचने लगा, जहाँ तक हो सकता ऐसे समय क्लास में आता कि कोई उससे बात ना कर सके, और सबसे पहले उठकर पिछवाड़े से बाहर निकल जाता। अपनी ओर से ध्यान हटाने के लिए उसने एंटीगोनम का फूल लगाना भी छोड़ दिया, लेकिन उसे लगने लगा कि इसका असर उल्टा ही हो रहा है। जिस दिन वह पहले पहल बिना फूल लगाए आया, उस दिन उसने देखा बोर्ड पर 3-4 गुच्छे एंटीगोनम के टंगे हैं और सामने लड़कियां की बेंच पर 2-1 फूल किसी ने रख दिए हैं। दूसरे दिन किसी ने बोर्ड पर लिख दिया था, शेखर के फूल कहाँ है, अगली बेंचों से पूछो। अगली बेंचों पर लड़कियां बैठती थीं। उसने देखा कि उसका निस्तार कहीं नहीं है। कभी वह कहीं भाग जाना चाहता, कभी वह चाहता कि किसी लड़की से पूछे, सब लड़कियों से पूछे, वे क्या चाहती है, क्या चाहती है उससे, क्या सचमुच उनका वही विचार है जो लड़के अनुमान करते हैं, जो लड़कों के बोर्ड पर लिखे वाक्यों से ध्वनित होता है। फिर कभी उसे लगता कि अगर सचमुच वही बात है, तब वह पूछ कर और बेवकूफ़ बनेगा। यह सब परिणामहीन उलझन उसे खाने लगी। एक दिन उसने पाया कि वह अकारण हर समय उन लड़कियों की बात सोचता रहता है। क्लास में कुछ पढ़ता है या प्रोफेसर के प्रश्न का उत्तर देता है, तो अपने को इस ध्यान में लगा पाता है कि उसका असर उन लड़कियों पर कैसा होता है। जिस दिन उसने पहले पहल या जाना, उस दिन कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया। क्या मैं सचमुच हार गया? क्या वह रोमांटिक विचार ठीक है? और स्त्री नियति बनकर पुरुष को अनजाने अपना गुलाम बनाती है और उसके प्राण ले लेती है। वह नहीं मानेगा इसे। वह नियति का गुलाम नहीं है, उसका प्रतिद्वंद्वी है। वह उसी दम क्लास से उठकर बाहर चला गया। 2-3 घंटे बाहर भटकता रहा और अंत में मानो अभिभूत सा होकर समुद्र की ओर चल पड़ा। लेकिन उस दिन उसे समुद्र से भी संतावना नहीं मिली। तब वह लौटकर अपनी रात्रि पाठशाला में जा बैठा और बच्चों से बातें करने लगा। परीक्षा के दिन निकट आ रहे थे। शेखर का कॉलेज तैयारी की छुट्टियां के लिए बंद होने वाला था और निश्चय हो गया था छुट्टियां होते ही रात्रि पाठशाला भी बंद कर दी जाएगी और कॉलेज दोबारा खुलने पर खुले। इस शीघ्र आने वाली 4 महीने की लंबी अवधि पर बालक कुछ खिन्न थे, इसलिए शेखर का स्वागत उन्होंने अधिक उत्साह से किया और शेखर थोड़ी देर के लिए नारी जाति को और अपनी मुसीबतों को भूल गया। उन बच्चों के मध्य में उसे लगा कि वह रक्षक है, समर्थ है। वह भूल गया कि वह एक भाराक्रांत थका हुआ और बेवकूफ़ शिकार है जिसके पीछे कई शिकारी लगे हैं। समुद्र के किनारे खुली धूप में दोपहर भर नंगे बदन भटक कर शेखर शाम को घर लौटा। वह नहाने गया था, पर नहाने पर भी उसकी अशांति दूर नहीं हुई थी और वह अपने कपड़े कंधे पर लाद कर तपती हुई रेत पर भटका किया था। जब उसका बदन धूप से जलकर स्याह पड़ने लगा था, तब दोबारा नहाकर और कपड़े पहनकर वह घर आया था। हॉस्टल के जीने पर चढ़ते ही उसने देखा उसके कमरे से बाहर रात्रि पाठशाला की उसकी क्लास के दो लड़के खड़े हैं। उसने जल्दी से पास जाकर पूछा, क्या है सांब? सांब शिव ने चुपचाप एक लिफाफा उसकी ओर बढ़ा दिया। शेखर खोलकर पढ़ने लगा। बड़ी मेहनत से काटकर बनाई गई कार्ड पर बड़े बड़े अपढ़ अक्षरों में लिखा था कि उसी रात्रि पाठशाला के छात्रों की ओर से अध्यापकों की विदाई का जलसा होगा और उसमें अध्यापक चंद्रशेखर की प्रतीक्षा में है। शेखर के हृदय को एक मीठी करुणा ने छू लिया। उसने पूछा, औरों को भी बुलाया है? जी हाँ, सबको बुलाया है, पर अध्यापक सदाशिव के सिवाय बाकी नहीं आएंगे। क्यों? लड़कों ने उत्तर नहीं दिया। तब शेखर ने पूछा, जलसे में क्या होगा? अभिनंदन पढ़ा जाएगा। और दोनों लड़के एक दूसरे की ओर देख कर रह गए, बोले नहीं। शेखर ने मुस्कुरा कर पूछा, क्यों, कोई भेद है क्या? कुछ शरारत सूझी है? लड़कों ने कहा, बताने को मना किया है, पर साथ ही शेखर के मुस्कुराने से जैसे कुछ खुलकर उन्होंने कहा, जलपान भी होगा। ऐं कहकर शेखर चुप हो गया। उसके मन में आया कि पूछे इतने पैसे कहाँ से आए, लेकिन उनके इस स्नेह के ख्याल से वह ऐसा भर गया कि यह प्रश्न पूछना अपमान सा लगा। उसने कहा, अच्छा तुम लोग चलो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। लड़के चले गए। शेखर ने अविश्वास करना नहीं सीखा था, लेकिन आज ना जाने क्यों उसके मन में आया कि जो लोग निमंत्रण नहीं स्वीकार कर रहे हैं वे खाने के डर से नहीं वैसा कर रहे हैं। उस बोर्डिंग में अछूत वर्गों के ही लोग रहते थे, उनमें भी यह भाव है कि स्कूल के लड़के अछूत हैं और शायद यह भी कि कंगाल हैं और गंदे हैं। मन ही मन शेखर ने तय किया कि वह अगले वर्ष इन लोगों का सहयोग नहीं मांगेगा, बल्कि मिलने पर अस्वीकार कर देगा। उसने फिर स्नान किया, अच्छे सफ़ेद कपड़े पहने। फिर उसने अपने एक नए एल्बम में से तीन चित्र निकाले, नीचे उतर कर एंटीगोनम के बहुत से फूल लिए और रात्रि पाठशाला की ओर चल पड़ा। सदाशिव कहीं बाहर गया था और वहाँ से सीधा ही पाठशाला पहुँचने वाला था। जब जलपान करते करते शेखर और सदाशिव मीठे उलहने के साथ उन 26 27 छात्र स्कूल में तीन छोटी लड़कियां भी आती थी को कह चुके कि उन्होंने बिना उनसे पूछे जलपान के लिए आपस में चंदा इकट्ठा करके ठीक नहीं किया, और जलपान के बाद शेखर सब छात्र छात्राओं को चित्र और फूल बांट चुका। उनके अभिवादन के लिए जुड़े हुए हाथों को पकड़कर रूंधे गले से कह चुका, देखो पागल मत बनो। और इसके बाद सदाशिव भी थोड़े से शब्दों में उन सबको ध्यान धन्यवाद दे चुका। तब शेखर को चलने के लिए तैयार पाकर बच्चों ने कहा, शेखर दादा आज चुप ही रहेंगे। अध्यापक शेखर से शेखर दादा बनकर वह चुप नहीं रह सका, लेकिन बोलना तो पहले ही उसे असंभव हो रहा था। और फिर शेखर अक्षर ज्ञान कराने और थोड़ा बहुत काम चलाने लायक तमिल तो जानता था। इतना कहाँ जानता था कि अपने उस समय के भाव व्यक्त कर सके जिन्हें कि वह अपनी भाषा में भी नहीं कर सकता। लेकिन अपने पर जमी एकटक भोली आंखों से मानो वह संवेदन की एक नई भाषा सीखने लगा, और वह हिंदी अंग्रेजी तमिल की विचित्र खिचड़ी बनकर उसके मुंह से निकल पड़ी। पहले मैं समझता था मैं आपकी सेवा करने आया हूँ, या मेरी देन है, लेकिन आप लोगों ने मुझे सिखाया है कि वह झूठ था। हम लोग अपने घमंड में रहकर बूढ़े हो गए हैं, सूखे काठ की तरह अकड़ गए हैं। अब हमें आपसे विनय सीखना है, आपसे नरमाई पानी है, आपसे नया जीवन और नया यौवन पाना है। आज मैं आपकी जवान पर यह छोटे छोटे बिना अर्थ के अक्षर देखता हूँ जो हम कायदे में से आपको सिखाते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी इसी जवान पर एक नई भाषा के शब्द होंगे जिनमें अर्थ होगा वह ताकत होगी जो उथल पुथल मचा देगी और जाति और संप्रदाय का नाश कर देगी, एक नया धर्म पैदा करेगी जिसमें हम और आप भाई भाई होंगे, सगे होंगे। आज वह दिन नहीं आया है तो इसलिए कि अभी हमारे और आपके दिलों में वह नहीं है, लेकिन वह आएगा शीघ्र। शेखर ने अपने भारी होते हुए गले से जरा सा आराम देने के लिए चुप होकर चारों ओर देखा। कुछ लड़के उसकी बात समझ रहे थे, कुछ नहीं समझ रहे थे, लेकिन फिर भी इसने से उसकी ओर देख रहे थे। यह देखकर उसके भीतर कुछ उमड़ आया। उसने सदाशिव को पुकारा, सदाशिव मेरी बात ये नहीं समझ रहे हैं, तुम सुनो और मेरी ओर से अनुवाद कर देना। और फिर कहने लगा, जिन लोगों के साथ रहना और खाना मैंने स्वयं चुना है, ये सभी अछूत हैं, आदर्शनीय हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ उनमें मैंने मित्र पाए हैं, भाई पाए हैं। कोई उन्हें पूछता नहीं है, देखता नहीं है, उनके पास नहीं जाता है, इसलिए उनके दिल सच्चे हैं, ताजे हैं और आग से भरे हैं। उन लोगों से कोई बात नहीं करता, इसलिए उनमें अनुभूति और भी तीखी है। आप ही वे लोग हैं, आप ही मेरे संगी संगी और स्नेही है, आप ही मेरा कार्य क्षेत्र है और आप ही मेरी शक्ति। मैंने आपको अपनाया है, पहचाना है और मैं इसमें सुखी हूँ, लेकिन आप इसके लिए कृतज्ञ मत होइए। आप उस तरह अपने को छोटा मत बनाइए। मैं ब्राह्मण होकर आप लोगों को अपने साथ ले रहा हूँ, ऐसा भाव मुझ में नहीं है। मैं स्वयं आपके साथ आया हूँ, भीतर कहीं मैं भी अछूत हूँ, आपका भाई हूँ। मैं अपना आपको दान नहीं किया, मैंने आपको पाया है। शेखर चुप हो गया। सदाशिव आगे आकर उस व्यक्तित्व का अनुवाद करने लगा। लड़के उसे सुनने लगे। जो वयस्क थे वे कुछ करुणा से स्नेह से शेखर की ओर देखने लगे। उनके पीछे शेखर ने देखा कि एक लड़का दोहार लिए खड़ा है और एकाएक वह अभिभूत हो गया, हल से जोती हुई भूमि की तरह टूटा हुआ सा अनुभव करने लगा। सदाशिव की बात समाप्त करने से पहले वह उठा और तेजी से बाहर निकल गया। पीछे से अनुमान से जाना कि कुछ गड़बड़ फैली है, कुछ लोग रोकने निकले हैं। वह भागा। भूलना गलत है, भूलना असंभव है, वह भाराक्रांत है, थका हुआ है, बेवकूफ़ है और चारों तरफ से घिरा हुआ है। फिर समुद्र पर, लेकिन आज समुद्र जैसे उसे दिखता नहीं। आज या भीतर की घुमड़ती हुई घटा उसका क्षितिज भर रही है, उसे लीलने भरती जा चली आ रही है। वह लौट कर बोर्डिंग आया। दो एक कपड़े, किताबें और एक तौलिया लपेट कर उसने गठरी बनाई और अडियार नदी पर पहुंचकर महाबलीपुरम जाने वाली रात की नाव पर सवार हो गया। महाबलीपुरम में एकांत समुद्र है, किनारे पर बहुत से मंदिर हैं, पीछे पोखरे हैं जिनमें कमल के पत्ते छाए होंगे। वह शायद वह कुछ अशांत हो चुके हैं, कुछ पढ़ सके, परीक्षा के लिए तैयार हो सके। गर्मी है, नाव के भीतर बैठना असंभव है, छत के ऊपर बैठने की जगह नहीं है, छत दोनों की तरफ की ढालू है। मांझी उस ढलाव पर ही ना जाने कैसे लेट रहे हैं और सो भी रहे हैं। यह देखकर शेखर भी जा लेटता है। बीच के ऊंचे स्थान पर बाहें अटकाकर वह लेट जाता है। जब तक बाहें वहां रहे तब तक ठीक है, पर छोड़ने पर उसे लगता है कि वह फिसल कर नदी में गिर जाएगा। वह गिरने का खतरा मानो जगह को और ग्रहणीय बना देता है। शेखर एक हाथ से छत पकड़कर और किनारे की ओर सरक आता है। आगे क्षितिज तक गई हुई नदी को देखता है। चांद निकल रहा है। नाव की गति से नदी पर उठी हुई छोटी छोटी मछलियाँ चांदनी में चमक कर पहरे हट जाती है, मानो बुला रही हो। सतह के नीचे भी छोटी छोटी बिजली से चमकने वाली मछलियाँ इधर उधर भागकर मानो हरी आग से कुछ लिखती जाती है। उनके भोगने से आलोड़ित पानी भी किसी प्रकाश में चमक उठता है। मानो उसमें भी बाहरी आग लगी हुई है। नाव भी चांदनी में धूल सी गई है और आलोक में उसकी गति मानो और भी शब्दहीन हो गई है। गर्मी के कारण मल्हा भी चुप है। रहस्य 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 शेखर मानो धीरे धीरे अपने आप में से निकलने लगता है, खुलने लगता है। यह इस व्याप्त रहस्यमय मौन से मिलकर स्वस्थ होने लगता है। हॉस्टल के लड़के, कॉलेज की लड़कियां, शहर के लोग सब उसकी चेतना में से मिटने लगते हैं। उनके द्वारा पाए हुए आघात, घाव इस स्वच्छ चांदनी में मैल की तरह धुलने लगते हैं। उसकी बाँह थक रही है, वह हाथ की बजाय अपनी गर्दन वहाँ अटका कर और पैर छत की सिर में बंधी हुई एक रस्सी की गांठ में अटका कर सीधा लेट जाता है और पाता है कि वह फिसलता नहीं, लेट सकता है। थकान उसे आती है, बड़ी मीठी थकान, पर मस्तिष्क उसका भरा आ रहा है उन स्कूल के बच्चों से, उनके मुग्ध दृष्टि से, इस मुग्ध चांदनी से, और आज ना जाने क्यों शारदा के ध्यान से भी। शारदा को देखे 2 वर्ष हो गए हैं, ना जाने वह है कहाँ। शेखर ने याद नहीं किया, लेकिन आज इतने दिन बाद, इतनी कला और कटुता के बाद, इस एक स्वच्छ शांत स्नेह भरे क्षण में वह इस सारे रहस्य का हिस्सा बनकर आई है। शारदा, थकान, चांदनी, शारदा। अगर वह सो सकता, शारदा को स्वप्न में देख सकता, तो सो सकता। महाबलीपुर को सहस्त्र मंदिरों का स्थान कहते हैं, वह बेजा नहीं है, लेकिन उन अगिनत मंदिरों का अवशेष समुद्र तट पर बना हुआ शिव का मंदिर, जिसका द्वार समुद्र की ओर खुलता है, जिसके अनगढ़ पत्थर के चोखटे के बीच समुद्र का विस्तार दिखता है और उसके पार सूर्य और चंद्रमा का उदय, शेखर ने एक ही दिन में दोनों देखे हैं। फिर रात भर वही मंदिर की दहली में पड़े रहकर चांद का क्रमशः ऊपर उठते हुए छोटा होते जाना देखा है। मानो वह परे हटता जा रहा है और देखते देखते उसे फिर शारदा की याद ने ओस की तरह मीठे स्पर्श से भिगो दिया है। महाबलीपुर में आने के दूसरे दिन शेखर सवेरे सूर्योदय देखकर ही मंदिर से लौटा और सो गया। 10-11 बजे उठकर उसने मुंह हाथ धोकर जलपान किया और फिर घूमता हुआ समुद्र तट पर जा पहुंचा। एक किताब उसने हाथ में ले ली थी, यद्यपि वह जानता था कि वह पढ़ेगा नहीं। समुद्र तट पर मंदिर की छाया में बैठकर वह समुद्र पर खड़े हुए एक पत्थर के स्तंभ की ओर देखने लगा। कभी वह स्तंभ में एक मंदिर के गोपुरम का अंग था, लेकिन समुद्र आगे बढ़ता हुआ उसे गोपुरम और मंदिर को लील गया और शिव मंदिर के द्वार तक आ पहुंचा। उसी का स्मारक वह स्तंभ अभी शिव मंदिर तक आगे खड़ा था। 200 वर्षों से अरोग सागर के वारों को अचल भाव से सहता हुआ शेखर को उस स्तंभ तक तैर कर जाने की इच्छा प्रबल हुई। वहां से मंदिर का दृश्य कितना सुंदर होगा, और फिर मंदिर के पीछे जब सूर्यास्त होगा, तब मंदिर की सीढ़ियों पर स्वर्ण किरट पहने हुए लहरों की क्रीड़ा कितनी मनमोहक। 3 बज चुके थे। एक घंटा भर उसने किसी तरह पढ़ने के बहाने अपने को रोका। फिर उसने कपड़े उतार कर एक पोटली बनाकर रख दी और पानी में उतर पड़ा। तैरना उसने अभी तक ठीक तरह से नहीं सीखा था, थोड़ी थोड़ी दूर तक ही किसी प्रकार चला जाता था। आधा रास्ता तय करते करते उसकी सांस फूलने लगी, लेकिन वह यह सोच आगे बढ़ता गया कि अब तो जैसा पीछे लौटना वैसा ही आगे बढ़ना। आखिर जब तक उसकी शक्ति बिल्कुल खर्च हो गई, जब हाथ उठाना भी एक यातना बन गया, तब किसी तरह वह स्तंभ के पास पहुंच गया। बची हुई शक्ति से उस स्तंभ के चबूतरे को पकड़ा और अपने को खींचकर उस पर बिठा लिया, लेकिन बैठकर भी वह सुस्ता नहीं सका। ज्वार उठ रहा था, लहरों का वेग बढ़ता हुआ जा रहा था और स्तंभ का चबूतरा भी धीरे धीरे डूब रहा था। अपनी जगह कायम रखने के लिए अब शेखर खंभे को जकड़ कर बैठा था, पर प्रत्येक लहर मानो उसे स्थानच्युत करने के लिए अधिक क्रुद्ध फुफकार करती थी। थोड़ी ही देर में शेखर ने पाया कि सिर्फ वह टिके रहने के लिए जितना जोर उसे लगाना पड़ रहा है वह उसे शीघ्र थका देगा और तब उसका वहीं डूबना निश्चित हो जाएगा। उसके मन में मानो तदस्थ भाव से यह बात आई कि वह वहाँ वैसे मरना नहीं चाहता है, उसकी मृत्यु और किसी तरह होने को है और उसे अभी कुछ करना बाकी है। शेखर ने स्तंभ को छोड़ दिया और किनारे की ओर तैरने लगा। सूर्य अस्त अभी देर थी, लेकिन धूप का प्रकाश कुछ लाल सा होने लगा था और किनारे पर मछुओं के कुछ नंगे बच्चे इकट्ठे होकर नाच रहे थे। शेखर उनका स्वर नहीं सुन सकता था, लेकिन उसे लगा कि वे उसे ही खंभे के पास खड़ा देखकर चिल्ला रहे थे। उसे इससे सुख सा हुआ। वह तैरते हुए अपने को भी उन बच्चों में एक बच्चा अनुभव करने लगा। वह थक गया, हाथों ने उठने से इनकार कर दिया। वह गोते खाने लगा। उसे याद आया कि ऐसी हालत में घबराना नहीं चाहिए, गोता खाकर फिर सांस के लिए ऊपर उठना चाहिए। वह लहर के नीचे डूब गया। थोड़ी देर बाद फिर ऊपर आया, तब सांस की कमी से उसके सारे शरीर में सुइयां चुभ उठी थी। उसने हवा के एक बड़े से झोंके के लिए मुँह खोला और एक लहर आई जिससे ऊपर वह उठ नहीं सका। मुँह में हवा के साथ पानी भर दिया और वह फिर डूब गया और फिर ऊपर उठा, फिर मुँह खोला, एक गहरी सांस ले कि फिर लहर में छिप गया, तिलमिला गया, डूब गया। तब एकाएक उसने अपने को छोड़ दिया। कोई लाभ नहीं इसका, आगे मृत्यु है, फिर उठेगा, फिर पानी भर जाएगा, बेहोश हो जाऊंगा और अनजाने में मर जाऊंगा। व्यर्थ, सांस क्यों लूं, मृत्यु ही सही, मृत्यु में जान लूंगा और मृत्यु क्या होती है अनुभव कर लूंगा। यह घबराना नहीं चाहिए, ऐसा शायद किसी ने बतलाया है, घबराना नहीं। उसने आंखें खोली, खारा पानी उनमें चुभ गया। विस्तीर्ण कड़वा नीलपन, मृत्यु में देख लूंगा, घबराना नहीं है, मृत्यु। बच्चों का कोलाहल, क्या ये फरिश्ते हैं? शेखर ने उठने की कोशिश की, लेकिन सफलता इतनी ही मिली कि घबरा कर मुँह से और नाक से खारा पानी उलट दिया। पीठ में बड़ा दर्द हो रहा था, छाती पर मानो पत्थर रखा हुआ था, बदन सारा चरमरा रहा था। वह अवश्य मर रहा है, लेकिन मर गया क्यों नहीं है? उसने फिर उठ बैठने की कोशिश की, आंखें खोली। मछुओं के बच्चे उसके छिले हुए बदन को घेरे हुए थे, एक आदमी उसकी छाती दबा रहा था। समुद्र को उसकी जरूरत नहीं थी, लहरों ने उसे निकाल कर बाहर फेंक दिया था। वह एक बड़ी जलती हुई यातना से भरी कोशिश से उठ बैठा। वह चाहता था उस रात मद्रास लौट जाए, लेकिन उठना भी उसके लिए असंभव था। मछुए उसे धर्मशाला तक पहुंचा गए थे, वहीं वह पड़ा था। सारा बदन बुरी तरह दुख रहा था, लेकिन उसे लगता था जो कुछ हुआ था ठीक हुआ था, अब वह जी सकेगा, बढ़ सकेगा। उसने मानो पुनः जन्म पाया था और अब वह जीवन का सामना दोबारा करने के लिए तैयार था। वह जो चला आया था उससे सौंदर्य में जो वेदना को भुला देने की संघर्ष से बच भागने की कोशिश की थी वह व्यर्थ थी, गलत थी। सौंदर्य कुछ नहीं है अगर वह शक्ति नहीं है, प्रेरणा नहीं है, या उसे समुद्र ने सिखा दिया था। उस आदि गुरु, आदि सत्य, आदि शिव, आदि सुंदर, सुंदर समुद्र ने। सुंदर वही है जहाँ संग्राम है और उसे वही वह देख सकता है जिसके भीतर शक्ति है। उस आद शक्ति को जिसने एक बार देखा है उसने अपने को सदा के लिए समर्थ बना लिया है। वह पद भ्रष्ट नहीं हो सकता, मर सकता है पर झुक नहीं सकता, नष्ट हो सकता है पर कींच में नहीं रेंग सकता। लेकिन जीवन ना जाने क्यों सूना हो गया। शेखर ने अपने को हॉस्टल के लोगों से किसी प्रकार के भी संपर्क से घींच लिया। एंटीगोनम क्लब को तोड़ दिया, पत्र भी बंद कर दिया और निर्मम होकर अपने पाठ्य पुस्तक चाटना शुरू किया। लेकिन वह शून्य कुरेद कुरेद कर कहने लगा, लोगों से बचे लोगों, मुझे कैसे बचोगे? दिन भर पढ़कर या पढ़ने की कठोर या अर्थप्राय तपस्या करके वह शाम को उदास सा मुँह लेकर कभी समुद्र किनारे जा बैठता, कभी हॉस्टल से कुछ दूर तक एक सरोवर के बीच में बने हुए मंदिर में पीछे, जहां घंटा ध्वनि और आरती तो सुन पड़े हैं और झील में दीपकों का प्रतिबिंब भी देखे, लेकिन आने जाने वाले लोग ना दिखे। उस पर एक दुख की छाप थी, यद्यपि वह नहीं जानता था कि उसे क्या दुख है, समझ नहीं पाता था। कभी उसे लगता वह सौंदर्य चाहता है, सौंदर्य शक्ति है, लेकिन वह शक्ति नहीं मांगता, सौंदर्य मांगता है। कभी उसे लगता वह एक संगी चाहता है, लेकिन वह संगी भी देवदास नहीं है, सदाशिव भी नहीं है और शारदा भी नहीं हो सकती। यद्यपि वह चाहता है कुछ और, इनसे भिन्न कुछ, इनसे ऊपर कुछ, लेकिन वैसा क्या हो सकता है? अपने से झलझला कर वह पूछता, क्या मैं देवता चाहता हूँ, जबकि वे होते नहीं, हो सकते नहीं। एक दिन सदाशिव ने कहा, देखो शेखर, अभी परीक्षा के 3 सप्ताह बाकी है, काफ़ी पढ़ाई हो सकती है, क्यों ना मेरे साथ घर चलो, वहाँ त्रावणकोर की शांति में ठीक से पढ़ सकोगे। शेखर ने ख्वामा खां अप्रश्न स्वर में कहा, क्या मैं पढ़ता नहीं हूँ? पढ़ते तुम हो, लेकिन पढ़ाई नहीं होती। क्लास में तुम सदा अच्छे रहते आए हो, अब देखता हूँ। शेखर से ने कुछ उदासीन स्वर में बिना विरोध में कहा, पास तो हो जाऊंगा कि नहीं? सदाशिव ने इसका उत्तर नहीं दिया, बोला, मैं कल परसों चले जाने की बात सोच रहा था, तुम भी चलो तो अच्छा हो, इकट्ठे होंगे तो दोनों की प्रोत्साहन भी मिलता रहेगा, तुम्हें अच्छी तरह पास होना ही चाहिए शेखर। शेखर कुछ देर तक चुप रहा। उसने देखा कि सदाशिव का निमंत्रण सच्चा है, उसकी सत्कामना भी सच्ची है और त्रावणकोर शारदा का जन्म स्थान, उसके शेषव की क्रीड़ा स्थली और शायद उसका वर्तमान निवास। एकाएक वह सदाशिव के प्रति रुखाई के लिए शर्मिंदा हो गया, लेकिन हाँ, वह नहीं कह सकेगा शारदा के कारण भी नहीं, बल्कि उस प्रलोभन के कारण और भी नहीं। समुद्र ने उसे वापस यहाँ फेंक दिया है, यहाँ यहीं वह रहेगा इस अधमरी अवस्था में, ऐसा ही अकेला। नहीं सदाशिव, मैं नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाओगे? नहीं, मैं बहुत बदतमीज आदमी हूँ, तुमसे लड़ूंगा, तुम्हें भी नहीं पढ़ने दूंगा, मुझे तो पास होना नहीं है, मैं खत्म हो गया हूँ और उसका क्रोध तुम पर निकालूंगा मैं। एकाएक शेखर लौट पड़ा और चलने लगा। सदाशिव ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, शेखर मुझे बताओ, तुम्हें क्या दुख है? शेखर पिघल गया, उसने चाहा कि कंधे पर से उसे हाथ को झटक दे, जिसके सहारे सदाशिव एकदम इतना पास आ गया, पर वैसा नहीं सह सका, पर वैसा कर नहीं सका। पर उस हाथ के स्पर्श ने उसका निश्चय बदल दिया, लेकिन इनकारी की रुखाई अब स्वीकृति में आ गई। शेखर ने ढीले स्वर में कहा, अच्छा चलता हूँ, लेकिन एक शर्त है। क्या? कि आज ही चल पड़ो, अभी शाम की गाड़ी से। सदाशिव ने एक स्निग्ध मुस्कान लेकर कहा, चलो बांधो बिस्तर। त्रिवेंद्रम पहुंचकर सदाशिव ने घर में शेखर को अलग कमरा दिलवा दिया और कह दिया कि वह जितना चाहे एकांत ले सकता है, सदाशिव भी बुलाने पर ही आएगा, केवल नौकर अपने काम के लिए आया करेगा। शेखर ने नज़र फिराकर चारों ओर देखा, बड़ी शीशेदार खिड़की से बाहर झांककर वह खड़े यूकेलिप्स के पेड़ और उसके नीचे पड़ी कैनवस की आराम कुर्सी को भी, और संतुष्ट होकर पूछा, यह कमरा है किसका? पहला मेरा था, अब तुम्हारा है, पढ़ाई के लिए ठीक रहेगा। शेखर ने जैसे जाग कर कहा, सदाशिव तुम हो दोस्त कहलाने के काबिल, और वह कहने के प्रयास में झेप सा गया। सदाशिव चला गया। पढ़ाई कुछ ठीक होने लगी। वह पाता कि सदाशिव के अलावा उसके घर के लोग उससे स्नेह करते हैं। उसने स्वयं कहकर भोजन उनके साथ ही करना आरंभ किया। उसके बाद कुछ देर वह उसके उनके साथ सदाशिव की वृद्धा और कुछ कुछ पागल किंतु स्नेह भरी माँ के साथ और सदाशिव के छोटे भाई के साथ गपशप भी कर लेता। कोष्ट में सदाशिव की एक बहन थी जिससे माँ को बहुत प्रेम था। उसके मरने पर ही वह दुख से पागल हो गई थी और तब से मस्तिष्क का विकार पूर्णतः ठीक नहीं हुआ था। कोष्ठ बंद। केवल शाम को घूमने जाते समय उसे किसी का साथ सहज नहीं होता। वह अकेला ही ना जाने किधर किधर भटक कर रात तक को लौट आता। कभी कोई पूछता कि किधर गया था तो कह देता यूं ही शहर की तरफ, या यूं ही पता नहीं कहाँ, कोठियां ही कोठियां थी। 6 दिन की पढ़ाई के बाद उसे फिर एक धक्का लगा। घूमते घूमते वह याददाश्त के लिए अक्सर राह की कोठियों की दुकान के बोर्ड पढ़ा करता था, यद्यपि बहुत ध्यान से नहीं और अक्सर पढ़ते ही भूल जाता था। उस दिन भी वह अनमना सा बोर्ड देख रहा था कि दिल धक से हुआ। उस धड़कन से चौंक कर उसने दोबारा बोर्ड पढ़ा, शारदा के पिता। वह ठिठक गया। फाटक के पास आकर दोबारा नाम पढ़ा, फिर खड़ा रह गया। भीतर जाने को हुआ लेकिन इतना उद्विग्न था कि जा नहीं सका। फिर धीरे धीरे वह वापस लौट आया। उस शाम और अगले दिन वह किसी से नहीं मिला। शाम को वह फिर निकला घूमने और उधर ही चला। अहाते के भीतर घुसकर देखा, कोई नहीं था। कोठी के बरामदे में जाकर उसने किवाड़ खटखटाया। नौकर ने किवाड़ खोलकर नाम पूछा। शेखर ने बता दिया। कुछ क्षण बाद उसने देखा कि शारदा की माँ के सामने खड़ा है। माँ ने बहुत सी इधर उधर की बातें की, स्वास्थ्य पूछा, परीक्षा का नतीजा पूछा, अब की पढ़ाई की बात पूछी, माता पिता का कुशल प्रेम कुशल क्षेम पूछा, वहाँ आने के कारण और रहने का ठिकाना पूछा, चाय के लिए पूछा। शेखर को सिर्फ एक ही बात पूछनी थी लेकिन वह उसके लिए साहस ना बटोर सका। वह उत्तर ही उत्तर दिया जा सका। आधे घंटे बाद वह लौट आया। 8वें व 9वें दिन भी पढ़ाई नहीं हुई। तब उसे याद आया सदाशिव ने 10 दिन के लिए वहाँ आने की बात कही थी, क्या कल लौटा ना होगा। वह जल्दी कपड़े पहनकर फिर उधर चला। फाटक के भीतर घुसते ही उसने देखा कोठी से एक और शारदा खड़ी है। उसने यह भी लक्ष्य किया कि शारदा ने भी उसे देख लिया है, पहचान लिया है और क्षण भर भी रुके बिना फौरन भीतर चली गई। वह भीतर जाकर बैठ गया। माँ थी, उनसे बातचीत करने लगा। आज चाय को भी उसने इनकार नहीं किया, उसमें कुछ समय तो लगेगा। शेखर कमरे में आई और अब मानो उसने पहले पहल शेखर को देखा। विस्मय के स्वर में बोली, तुम यहाँ कहाँ, कब आए। शेखर के उत्तर देने से पहले ही माँ ने मीठे स्वर में कहा, बेटी इनके लिए चाय बनवा कर भेज दो। शेखर ने लक्ष्य किया कि माँ के स्वर की वह मिठास सभ्यता के बरसों के अनुभव से प्राप्त हुई है। चाय पीकर वह चला। शारदा फिर नहीं दिखी। घर पहुंचकर शेखर ने सदाशिव से कहा, क्या कल ही चलना पड़ेगा, दो एक दिन ठहर नहीं सकते। दो छोड़ के 3 दिन ठहरो, पढ़ाई ठीक हो रही है। हाँ, कितने घंटे पढ़ते हो। हफ्ते भर में ही क्या सूरत निकल आई है, कुछ मद्रास के लिए भी छोड़ दो ना। हूँ, कहकर शेखर फिर एकांतवास में घुस गया। शेखर रोज वहाँ जाता लेकिन बंगले के भीतर ना घुसता। उसने समझ लिया कि शारदा और उसके मिलने के बड़े सभ्य मीठे लेकिन ढंग से विरोध हो रहा है। वह फाटक से कुछ दूर बाहर खड़ा होकर उसकी प्रतीक्षा करता। तीसरे दिन शारदा अकेली बाहर निकली। उसके हाथ में एक सेटिन का मनी बैग था, शायद बाजार के लिए वह निकली थी। शेखर एक पेड़ की आड़ में था। जब शारदा बिल्कुल पास आ गई तब वहां से निकलकर उसने पुकारा, शारदा। शारदा का चेहरा खिल उठा, लेकिन फौरन ही उसने मुड़कर एक भीत दृष्टि से पीछे बंगले की ओर देखा। शेखर ने कहा, तुम तो ऐसे डरती हो जैसे मैं कोई भूत हूं। शारदा ने उत्तर नहीं दिया। तुम मुझे बताए बिना ही क्यों चली आई थी, मीठे उल्हाने से शेखर ने कहा, और तुम मुझे बताए बिना क्यों गुम हो गए थे, मैं तो जानती भी नहीं थी कि तुम कहाँ हो। शेखर ने लक्ष्य किया कि वे पास के एक पार्क की ओर जा रहे हैं। आजकल क्या कर रही हो? परीक्षा की तैयारियां, 10-15 दिन रह गए हैं। मैट्रिक? हाँ, मेरी भी परीक्षा होने वाली है, इंटर की। हाँ। थोड़ी देर की शांति के बाद शेखर ने कहा, परीक्षा के बाद तुम मद्रास आ जाना, वहीं कॉलेज में पढ़ना। क्यों? मैं भी वहीं हूँगा, और जो ना आऊं तो? शारदा शायद थोड़ा सा मुस्कुराई। तो मैं समझूंगा मैं तुम्हारा कोई नहीं हूं, तुम हो कौन? शेखर उस फीकी रोशनी में देख नहीं सका कि शारदा मुस्कुरा रही है या नहीं। वह पार्क के फाटक की चरखड़ी घुमाने लगा, लेकिन शारदा ने कहा, नहीं अब नहीं, मैं जाती हूँ, माँ बिगड़ेगी, फिर आऊँगी सवेरे, और जल्दी जल्दी लौट गई। शेखर भी धीरे धीरे घर लौट गया। सवेरे पार्क में वह फिर मिले। बातें रुक रुक कर शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे बांध खुल गया। शारदा ने बताया कि बड़ी बहन की शादी के लिए वे चल आए थे, और उसी समय पिता की बदली भी यहाँ हो गई थी, तब से वे यहीं हैं। उसने यह भी बतलाया कि शेखर की परीक्षा देने चले जाने के बाद वह बहुत रोई थी, रो रो कर बीमार हो गई थी। तब माँ ने कुछ समझ लिया था कि उसे क्या हो रहा है, और तब से उसका व्यवहार कुछ बदल गया था। उसने शारदा को बच्चा समझना छोड़ दिया था, अब वह उसे बराबरी का विनयपूर्ण बर्ताव करती थी, लेकिन उस विनय में कितना शासन था। कहते कहते एकाएक मुस्कुरा कर बोली, अब मैं बड़ी हो गई हूं ना। और तब शेखर अपनी बात कहने लगा, कैसे उसकी माँ भी कठोर शासन करती है जिसमें विनय भी नहीं है, वो कैसे उसने कॉलेज में मित्र बनाए हैं। अपने एंटीगोनम लीक की बातें, उसके आदर्श, उसकी रात्रि पाठशाला, उसकी निराशा, उसका सखा समुद्र और मंदिर और पोखरा और कमल के पत्ते। और फिर वह सुनाने लगा कि किस तरह वह महाबलीपुर गया था, किस तरह समुद्र में तैरने चला था और डूब गया था। शारदा के मुंह से एक हल्की सी चीख निकली जो शेखर को बड़ी प्रिय लगी। उसमें शेखर के लिए इतनी चिंता थी। तब वह भी और भी रोमांचकारी कहानियाँ सुनाने लगा, अपने घर से भागने की, कश्मीर में झील में डूबने की। शारदा ने कहा, बस करो, और नहीं सुनोगी ऐसी बातें। क्यों? वादा करो कि मानोगे, बताओ तो। तुमसे कुछ मांगना है, वादा करो कि दोगे। दूंगा, वचन दो कि अपने जीवन से ऐसा खिलवाड़ नहीं करोगे, इस खतरे में नहीं डालोगे। शेखर का हृदय सुख से भरा आ रहा था, और उसके साथ ही साथ उसमें एक साहस का उदय हो रहा था, लेकिन उसका दिल धड़कन के मारे फट जाएगा। उसने एकाएक कह ही तो दिया था, शारदा तुम मुझे प्यार करती हो? शारदा ने उत्तर नहीं दिया। बताओ शारदा, प्यार करती हो? शारदा ने हड़बड़ा कर उठते हुए कहा, मैं घर जाती हूँ, अब बड़ी देर हो गई, माँ नाराज होगी, फिर कभी बाहर भी निकल सकूँगी इतनी देर। शेखर के दिल की धड़कन धीरे धीरे शांत हो रही थी, आरंभ वह कर चुका था, अब आगे बढ़ना उतना कठिन नहीं था। शारदा के प्रश्न टालने से वह कुछ अप्रतिभूत तो हुआ, लेकिन फिर भी आग्रह से कहने लगा, पहले मैं नहीं जानता था कि प्यार क्या होता है, अब जानता हूँ, मैं तुम्हारा आदर कर सकूँगा। शारदा बताओ, प्यार करती हूँ, करती हो? और जो मैं कहूँ कि नहीं करती तो? शेखर से कुछ कहते नहीं बना। वह काफ़ी देर तक चुप रहा, भीतर ही भीतर ना जाने क्या उलट फेर करता रहा। फिर उसने कहा, शायद अभी मुझे पूछना नहीं चाहिए, पर मद्रास तो आओगी ना? यह विषय परिवर्तन उसे अच्छा नहीं लगा, लेकिन शेखर ने यह नहीं देखा। शारदा ने खंडित सी होकर कहा, और अगर ना आई तो? आई कैसे नहीं, आना पड़ेगा। शेखर ने कुछ क्रोध में, कुछ अपने से ही उस क्रोध को छिपाने के लिए हंसी में कहा और आगे धीरे धीरे उलझने लगा। शारदा ने कहा, नहीं आऊँगी, यहीं पढ़ूंगी, और आना व्यर्थ है, और मैं अकेली कहाँ रहूँगी, और तुम नहीं आओगी तो मैं समझूंगा तुम मुझे बिल्कुल नहीं चाहती। शारदा ने और कुछ भी कुंठित स्वर में जैसे उसकी बातें दोहराते हुए कहा, तब तो जान पड़ता है तुम्हें ऐसा सोचने का मौका देना ही पड़ेगा, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहती। शारदा, शारदा चुप, शारदा वह फिर चुप। शारदा, अब की बार कांपते हुए स्वर से, शारदा तुम्हें वे दिन याद है? और शेखर जल्दी जल्दी 2 वर्ष पहले की कितनी ही बातें गिना गया। स्कूल से आती हुई शारदा की प्रतीक्षा, चीड़ के वन में उनका मिलना, इकट्ठे बैठकर गीतांजलि का पाठ, फूलों का बिनना और अंत में वाचन, जब उसने एकाएक उठाकर दोनों हाथों से शारदा की आंखें मिच ली थी और उसके केसों में अपना मुंह छिपा लिया था, उनके सौरभ से अभिभूत होकर शारदा ने भी मुंह फेर कर व्यथित कांपते हुए स्वर में रुक रुक कर कहा, जिन बातों का ना होना, ना हुआ होना ही अधिक उचित है, उन्हें याद करने में कुछ लाभ है, ऐसा मैं नहीं समझती। शेखर ने आगे बढ़कर शारदा की दोनों कलाइयों को पकड़ ली। उसके आवेग में, उसके स्पर्श से, उसके स्वर में, एक साथ ही यत्न में दबाया कोप भी था, व्याकुल अभ्यंदना। शारदा, या तुम्हें क्या हुआ है? तुम मुझे प्यार करती हो, कहो कि तुम मुझे प्यार करती हो, छोड़ दो मेरा हाथ, कहती क्यों नहीं, कहो। शेखर ने अपनी पकड़ और भी कड़ी कर ली, तब एकाएक रोष और आंसुओं से रुंधे स्वर से, तुम्हें प्यार, मुझे खेद है कि मैंने तुमसे कभी बात भी की। शारदा ने झटक कर अपनी हाथ छुड़ा लिए और अपनी कलाइयों में पड़ी हुई शेखर की उंगलियों की गहरी छाप और देखती हुई घर की ओर दौड़ी। शेखर कुछ देर वहीं स्तब्ध खड़ा रहा, समझने की कोशिश करता हुआ कि यह क्या हो गया है, फिर धीरे धीरे घर लौट गया। अगले दिन फिर सुबह और शाम शेखर पार्क में जाकर प्रतीक्षा करता रहा, शारदा नहीं आई। तब शेखर को एकाएक विश्वास हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया है। उस अचंबा सा नहीं हुआ, समुद्र ने उसका स्वीकार नहीं किया था। समुद्र अपनी नीलिमा से सब कुछ अपना लेता है, उसने भी शेखर को अस्वीकार करके बाहर फेंक दिया था, वह अचेष्ट है। उसे शारदा नहीं स्वीकार करती है तो अचंबा क्या? शेखर ने सदाशिव से कहा, अब वापस चलना चाहिए, तैयारी पूरी हो गई है। तुम? सदाशिव एकाएक रुक गया, शेखर की आंखों में देखता रह गया। थोड़ी देर बाद उसने दुखी स्वर में कहा, अच्छा चलो, वहीं चलकर देखेंगे कैसी तैयारी हुई और वह जान लेगा। सदाशिव, तुम पूछते नहीं कि क्या हुआ है, तुम दुखी हो, इस दुख में अकेले ही रहोगे, मेरा पास आना बुरा लगेगा। सदाशिव, तुम इतनी बातें जानते कैसे हो? सदाशिव ने धीरे से कहा, अपनी माँ के पागलपन से मैंने बहुत कुछ सीखा है, जो भाग चुके हैं वही गुरु होने के काबिल होते हैं। चलते समय जब शेखर प्रणाम करने के लिए झुका, तब सदाशिव की माँ ने कहा, बेटा फिर कब आओगे, या तो तुमने बताया ही नहीं। शेखर का जी भर आया, उसने एकाएक झुक कर माँ के पैर छू लिए। माँ ने आदर होकर उसके सिर पर हाथ रख कर आशीर्वाद दिया। शेखर ने लक्ष्य किया एक ऐसे भाव से भर कर जो कृतज्ञता के बहुत निकट था, कि माँ ने उसे वहाँ साधारण आशीर्वाद वचन, तुम सखी हो, नहीं कहा, मैं नहीं कहा, माँ ने कहा, तुम यशस्वी हो। कुछ दिन और वह निरर्थक उद्देश्यहीन मेहनत और अनदेखती आंखों की पढ़ाई, उसके बाद आकांक्षाहीन होकर परीक्षा में बैठना, फिर उसका भी अंत। शेखर ने जान लिया कि वह पास हो जाएगा, लेकिन पास भर होगा, उससे अधिक कुछ नहीं। उसने सगी साथियों से विदा ली, फिर मद्रास से विदा लेने के लिए वह समुद्र तट पर गया। मद्रास के प्रांत से उसे उपराती हो गई थी, वह जानता था कि वह अब वहाँ नहीं लौटेगा। अब परिस्थिति से उसका संग्राम, वह उस उशिष्ट से मान लीला, अब किसी दूसरे युद्ध मुख पर होगी। शारदा से विदा, शारदा के देश से विदा। बहुत देर तक वह समुद्र में उमड़ने और उतरने को देखा किया, और और उसकी अगाध रहस्यमयता को समाप्त।